ये तो जरा सा मेरी अंगली में उठा रही, तो ढेर कैसे लग गया इतना?
वहां ढेर लग गया फल का।
मैया ने भी देखा कि भी क्या बात हुई इतने फल। तो मैया के मन में आया कि नारायण इष्ट देव है ना हमारे, और इस बच्चे पर नारायण की बड़ी कृपा है, तो नारायण के लिए संभव क्या है? वो पहले भर में जरा से कर दें, जो सृष्टि का उत्पादन करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं, ये भगवान यदि फलों को बढ़ाते हैं, कौन बड़ी बात है कि नारायण की कृपा से ही ये फल बढ़ गए। तो कन्हैया लोग बोले, मैया आप देर क्यों फिर, ये सब आ गए हैं ना, अब सबको तू बांट दे, सबको तू बांट दे। तो माता चामंडे नानंदेन कृतस्पंदेन करद्वंदेन तानि विभजन्ति तदंती तदंती कृत नाशता। मैया लगी फल बांटने पर फलों का अंत आए नहीं, फल पूरे हो ही नहीं। मैया ने कहा इतना कल कई दिनों तक फल बांटे मैया ने। अब मैया को बड़ा आश्चर्य कि फल अनंत हो गए। अब अनंत के हाथ में आज अनंत हो गया कौन बड़ी बात। और दूसरी बात, जिसने वो फल चखे सुन कन्हैया भी बोले, बड़े मैया ऐसा तो स्वाद हमको कभी आया ही नहीं। और सब लोग बोले बोले ये तो बड़ा बड़ा सुंदर, ऐसा स्वाद, ऐसा स्वाद, ऐसे स्वादिष्ट फल, ये बड़े चमत्कारी फल, अभी ऐसा स्वाद तो कभी हमको मिला ही नहीं। अब तमाम गोप बालकों को मैया बांटने लगी। अब वो सुंदरियां आई, कोई मथानी मांगने के बहाने, कोई किसी बहाने पर, रोज का काम था, किसी न किसी रूप में आया करती, आया करती। एक दिन आई एक आया करके देखा, देखा ये फल वल खा रहे हैं मजे में। अब ये फल खा रहे उसको ताका ही नहीं, वो तो अपने फल खाने में मस्त। अब वो बेचारी गूंज होके खड़ी रही, तो दूसरी बोली, दासी बोली, बोले दासी क्यों नहीं यहाँ पर नजर उजर लगा देगी, खड़ी खड़ी बहुत देर हो गई, तो नजर से जो खड़ी गई नहीं जा रही हूं ना, ऐसे ही जा चक्कर से आ गया, खड़ी रह गई। बोले अच्छा जा, बाहर निकली तो हार था मोती का, तो निकलने लगी तो हार वहीं पर तोड़ दिया, तमाम मोती बिखर गए श्याम सुंदर के आसपास वहीं पर आंगन में, तो मोती लगी बीन में। तो जाती क्यों नहीं, बोला जाऊंगे हाथ टूट गया, अब मोती छोड़ जाऊंगा ऐसे ही। तो घंटों लगा दी इसने, अब मोती तो दिन में बीने कब, तो मोती की तरफ आंख होता, आंख में लगी श्याम सुंदर की तरफ, उधर देखो। दासी ने कहा कि जाती श्याम सुंदर बीच बीच में देख रहे हंसे, मैया मैया सब देश की चेष्टा। मैया ने कहा दासी से, रोटो रात मत, बिना वो हंस रहा है लाला, उसको सुख मिलता है इसके रहने से, इसके पकड़ाने से उसको सुख मिलता है, लाड़ा भी सुख मिलता है ना, मत रोके इसको, जो आए सब काम लिया कर, लाला हंसे तो बस, कोई आए कुछ भी कहे लाला हंसे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है, और ये सब आती हैं जाती हैं देख जाती हैं, ऐसा आनंद छाया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक दिन की बात नहीं, दो दिन की बात नहीं, ये रोज की बात, रोज की बात। एक लीला इस बीच में और है, वो गर्भ संहिता की है, ये दुर्वासा जी जो है इनकी लीला दोनों की आती है। ये राधा रानी को तो कहीं मौका होगा तो बताएंगे, राधा रानी को देखने दिए गए थे और यहाँ मंगलारा के लिए भी आए। तो एक दिन की बात है, ये पधारे साहब, नंदरानी पीढ़े पर लिए बैठी थी, इतने में ये उतरे नीचे और खेलने लगे तो दाऊद जी और ये दोनों मजे में खेल रहे। उनके खेल को देख देख कर और ये नंदराई रोहिणी जी ये बड़ी आनंद मगना बैठी जनन मनन पीढ़ा पर निकट ललन तह खेले गुण मंदिर सुंदर तन सावर अति आनंद मन मेले शरद इंदु राकेश बिलिंदक बदन रूप निध सोहे कोटिन ओज मनोज मनोहर त्रिभुवन लख छज मोहे चंचल चलत चार रचनारे ललित गुर्जन की आभा मृग खंजन गंजन मन रंजन कहे कंज की काभा अड़कें छूट रही मुख ऊपर मंजु मेच घुंघरारी कल कपोल बोलन मृद खोलन ढकुकी कुटुम पियारी ये छवि चितो बिते दिन अपनो चित में और न आवे जिन दृग रूप अमीर से चाचो कहो और क्यों भावे। इस रूप का रस जिसने चख लिया उसके और रूप रस कभी मन में आता ही नहीं। ये रोज की दिनचर्या रोज खेलें रोज ये कभी पूजा करें कभी बालू में ये खेलने लगे कभी कुछ करें कभी कुछ करें इस प्रकार इनके खेल की लीला चलती रही। एक दिन के बाद ये पहुंचे बालू पर और लगे खेलने। अब यहां तो खेल ही है ना, तो श्याम सुंदर ने क्या किया बालू की अंजलि भरी और दौड़ करके दाऊ जी बैठे थे उनके सिर पर वोट दिला सीधाम बढ़ा गया पानी आग में गया बालू पर गई। अरे क्या किया क्या किया, तो श्रीराम दौड़ा पकड़ने के लिए भागे पीछे दौड़ा ये उसने जाकर के बड़ा बल था। अभी तो ये नारी नहरावे कौन, इनका मजा तो इनके हारने में जीतने में जीतने तो नहीं है, ये जीतते रहे तो इनके जीतने में कोई आनंद नहीं, जीते हुए हैं इनका आनंद तो हारने में ही है। तो दौड़ करके श्रीराम ने पकड़ लिया तो सोचा कि आंख में बालू डाल देगा, तो दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और बालू पर लेट गए। अब वो हंस पड़ा, वो कुछ दुख जनित हो आया था। हंस हंस के उसने इनके बदन पर पीठ पर बालू डालना शुरू किया। बोले ये तो कन्हैया पर बालू डाल रहा है, तो दाऊ जी दौड़े भरा बालू का गमछा उसके सिर पर डाल दिया। अब तो उसने इनको छोड़ दिया और दाऊ से और बच्चों से दे दिया। इस अवसर में भाग गए, निकल गए भाग गए। इस प्रकार खेल बस इसी यही अवसर था कि दुर्वासा जी अनुसुआ के पुत्र अत्रि ऋषि के बेटे ये पगडंडी से वहीं आ पहुंचे। देखा ये बालू खेल आए थे दर्शन के अभिलाषा से, पर उनके मन में ये बड़े प्रेमी माने जाते दुर्वासा जी, बड़े प्रेमी राजा जी के यहां जो गए ये बरसाने में भी बड़ी ललित कथा के स्वामी सुनाते थे, बड़ी ललित कथा वहां की। आए थे दर्शन करने के लिए पर उस परात पर ब्रह्म को जिस रूप में देखा आज तमाम बालू से बदन भरा हुआ धूल धूसरित आंखों में बालू सिर पर बालू तमाम केश राशि सिर के घुंघराले बाल तमाम बालुओं से ढके हुए और धूल में लौट रहे। तो धूल धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम भावंतम बालकं सार्धं हरिं वीक्ष्य सउष्मतः।
डूब गए आश्चर्य में दुर्वासा जी, देखा कि श्याम सुंदर के सारे अंग धूल धूसरित हो रहे हैं, तमाम अंग पर धूल लगी है, केश जो है ये टेढ़े में सजाए हुए नहीं रहे, मैया सजाती हुई इस समय तो टेढ़े में एक बकर केश टेढ़े केश हो घूम रहा है, अब टेढ़े बाल थे। और दिगंबरम कपड़ा अपना नहीं पहन रखा है, नंग धड़ेंगे ऐसे ही, और बालकों के साथ कभी दौड़ते हैं कभी खेलते हैं, दौड़े जा रहे हैं साथ।
देखा वो परास्पर ब्रह्म का ये रूप,
अब ये झांकी सबको ही होती ना, सबके सामने रहते हैं भगवान योग माया समावृत,
और प्रेमियों के साथ रहते हैं योग माया से अनावृत,
वहां योग माया ढके रखती है और यहां योग माया खेल का सारा आयोजन करती है। ये अंतर है भला,
वहां योग माया देखने वालों को ढक देती है, वो देख नहीं पाते, सामने रहने पर भी योग माया सागर के भगवान नहीं दिखते। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता,
और यहां योग माया उपाश्रता है, योग माया यहां पर योग माया से काम लेते हैं, योग माया यहां पर सारा खेल का आयोजन करती है, किसको हटाना है किसको लाना है, क्या क्या खेल का आयोजन करना है, कौन सी सामग्री दीपन सामग्री कौन सी यहां पर चाहिए, क्या चाहिए, कैसे सखा चाहिए, कैसी मंडली हो, कैसी भूमि हो, कैसा वातावरण हो, कैसे पुष्प हो, कैसी माला हो, सारी चीजें योग माया करती है।
तो ये आए थे परात्पर ब्रह्म को देखने, परात्पर ब्रह्म ये दीष्टे ने कहा इसे महाराज, परात्पर ब्रह्म दीष्टे ने दृश्यते त्रिग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी हुई, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आंखों से ये दूर से दिखाई देते हैं, तो इन्हें कोई आके यूं देख ले नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पर यही परात्पर जब उस यवनिका को दूर कर देते हैं और जो अनावृत होकर और सामने आ जाते हैं और उसकी आंखों से भी पर्दा हटा लेते, तब वो अनावरण भगवान के रूप को निरावरण, ये कथा आएगी चीर हरण के प्रसंग में बड़ी सुंदर, अनावरण निरावरण भगवान को निरावरण लोग देखते हैं। तो ये अभी तक कुछ थोड़ा सा आवरण रहा दुर्वासा जी को, ये परात्पर ब्रह्म को देखने आए और देखा यहां पर इनको, दिगंबरम बक्रकेशम धूल धूसर सर्वांगम, इस रूप में देखा बायकों के पीछे दौड़ते तो हरि रूप से सदृष्ण होता है, आश्चर्य हुआ, आनंद में नहीं डूबे आश्चर्य हुआ, और इनके जो इनका हृदय तपस्या के द्वारा पवित्र हो चुका था उस तपस्वी मन में भी एक शंका पैदा हो गई, स ईश्वर वयम भगवान कथम बाड़ई रुथन भूमि अयम तो नंद पुत्र श्रीकृष्ण परात्पर। दुर्वासा के मन में शंका हो गई, मालूम होता है परात्पर ब्रह्म नहीं, भला ईश्वर भगवान परात्पर ब्रह्म ये बालकों के साथ नंगे और ये जमीन पर लोटे, किसी ने भूल से कह दिया कि नंद के यहां और परमानंद घन परात्पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, अयं तो नंद पुत्र तो नंद का बेटा ही है, न कि श्री कृष्ण परात्पर, ये परात्पर ब्रह्म नहीं, ये शंका आ गई। शंका आते ही अब जहां संशय संशय आत्मा मनुष्य की भगवान संशय का रखेंगे नहीं। दुर्वासा मानो संशय के झूले पर बैठ गए, हिल गया मन, आवरण तो कुछ था ही और विक्षेप आ गया। ये तीन ही दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। तो ऐसा भक्त लोग मानते हैं, कुछ प्रेमी लोग, कि जिन तत्वज्ञों का मल, विक्षेप, आवरण दूर हो चुका है और वो जीवन मुक्त भी हो चुके हैं, उन पर भी भगवान की मुनिमन मोहिनी माया से विक्षेप और आवरण आता है। भगवान के परात पर जगदानंद विग्रह के संबंध में जगत ब्रह्म रूप है, इसमें उनके मन में कभी संदेह नहीं आता। इसके संबंध में उनके मन में चांचल्य नहीं आता। वे जगत की वस्तुओं को देखकर लालायित नहीं होते, उनका जो तत्व ज्ञान है वो तिरोहित नहीं होता, परंतु प्रेम का उदय न होने से भगवान की जो माया है, मुनिमन मोहिनी माया, ये माया उनके मन में विक्षेप और आवरण पैदा कर देती है। तत्व ज्ञानी भी यहां पर भगवत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ऐसा माना। ये सिद्धांत की बात है। तत्व ज्ञानियों को भगवत स्वरूप के दर्शन हो ही जाए, ये आवश्यक नहीं। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि परा भक्ति न हो तो तत्व ज्ञान में वो पूर्ण है। ये संकेत महाराज गीता में है भगवान का। ब्रह्म भूया कल्प के तत्व साधन है, फिर ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये शुरू की स्थिति बताई। ब्रह्मीभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, कम दृष्टि हो गया, आकांक्षा और शोक मिट गए, इस प्रकार का भी हो गया, इसके बाद भी पराभक्ति की प्राप्ति अभी शेष रहती है। इसके बाद मद भक्ति लभते पराम, सबको नहीं होती। जो इस पद के वांछा करने वाले होते हैं या प्रेमियों के संग से जिन तत्व ज्ञानियों में भगवत प्रेम की वांछा जागती है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है पराभक्ति प्राप्त करने का। और उसके द्वारा भगवान का जो यथार्थ स्वरूप है, जैसा जैसा जो कुछ है, भक्त्या नाम भी जानाति यावान ये शास्त्र तत्वतः। इसीलिए भगवान का एक वाक्य है श्री गोपिकाओं के संबंध में, मन महात्म्यम मत्सपर्या मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। तत्वतः तत्वतः नहीं जानते मनुष्याणाम सहसेषु इति सिद्धं विचितानपि सिद्धानां कश्चन माम व्यक्ति तत्वतः। तत्वतः माम व्यक्ति सिद्ध हो गए, यहां पर अर्थ बदलना पड़ता है, सिद्ध का साधक अर्थ करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो माम व्यक्ति का अर्थ तो वो करते हैं ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म को जानना अर्थ करें तो तत्व से जाना नहीं, ये बात आती नहीं, तो सिद्ध का अर्थ फिर क्या करें? वो करते हैं सिद्ध का अर्थ साधक। यहां तो साफ है, हजारों हजारों में कोई एक यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में जो सफल हो चुके इस साधन में, उनमें कोई कोई माम, ये माम शब्द है, यहां भी गीता में माम आया है महाराज, भक्त्या माम भी जाना थी यावान यश्चास्मि तत्वतः माम तत्वतः। और वहां गोपिकाओं के लिए भी यही बात है, गोपिका ही तत्व से जानती है। तो ये महर्षि के मन में, महर्षि दुर्वासा के मन में भी ये प्रेम का उदय पूर्ण न होने के कारण से, ये परात्पर ब्रह्म को ही देखने आए थे ना, और परस्पर ब्रह्म के लक्षण इनके मन में मौजूद थे, इन्होंने लक्षणों से मिलाया। परस्पर ब्रह्म के जो लक्षण इनके हृदय में बैठे हुए थे, उन लक्षणों से भगवान श्याम सुंदर को मिलाया। मिलते हैं कि नहीं तो नहीं मिले, वो धूल में लौटता नहीं, वो नंगा लौटता नहीं, इसमें अज्ञान होता नहीं, वो रोता नहीं, इस प्रकार पूजा करता नहीं, वो तो अपने आप में अपने आप मस्त रहता है। तो सोचा ये वो नहीं, स्वयं तो नंद पुत्र उसकी न श्री कृष्ण परात्पर कृष्ण नहीं। तो कहा भाई बात क्या है, बात यही है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई हो, अनुसुआ जैसी सती के तुम्हें पुत्र रहे और अत्री के समान परम तपस्वी तेजस्वी के पुत्र थे, तो इनको बुलाया था कृपा करने के लिए, नहीं आते कैसे? कृपा जिन पर करनी ही है, उनके मल विक्षेप को तो मिटाना ही है। तो अब जरा और लीला में आगे बढ़ें तो अरे बोले श्रीराम बता तू हारा कि मैं हारा, खेल रहे थे ना। अब मुझे क्या करते, इसे इनको मतलब नहीं, इनको सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है कि तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो। तो श्री राम ने कहा कि तू ही हारा, मैं कैसे हारा? तो नहीं बल तू हारा। तो बड़े श्याम सुंदर बोले अच्छा देख, तो साधु बाबा बैठा है, साधु बाबा तो देखता है। हाँ बस देख बैठे, उसको पूछ ले, बाबा से पूछ ले कि कौन हारा, वो तो देख रहा है ना बजा बजा सब साधु, उससे पूछ ले कि कौन हारा। ये संदेह में इनका हृदय आंदोलित है, संदेह के हिंडोले पर झूल रहा है मन, तब भी वो नहीं है तपस्वी है, बाहर की शांति, एक कदम्ब का पेड़ था उसकी छाया में चुपचाप महर्षि शांत खड़े हुए हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा है, सोच रहे हैं कि कहीं भूल तो नहीं गया मैं, पर आज पर ब्रह्म की लीला चल रही हो और मैंने संदेह तो कर नहीं कर लिया, गंभीरता से विचार रहे हैं और तमाम अंगों से मानो तेज झर रहा है, निकल रहा है, नेत्रों में भी विचित्र आभा है। भगवान पास आए, पास आए तो बदलने लगा इनको, पास आए वो समीप आए कि बदलने शरीर में कंपन आए, और ये सुंदरा कांपने उठा। जनक के मन में हुआ था बड़े आंसू क्यों आ गए मेरे मन में, और ये क्या हो गया, रोमांच क्यों हो गया? तो इनका शरीर कांपने लगा, जो गंभीर मुद्रा थी वो चंचल हो गई, मुंह देखने लगे और ये भगवान श्री श्याम सुंदर के अंगों की दीप्ति में इनके सारे अंगों के सारा तेज मन उनके अंदर जाके समा गया। अब इनके एक स्थिति निर्वचनीय हो गई, ये अब सोच नहीं सकते, अब वो सारी बात भूल गई। अब इनको अपनी दशा पर आश्चर्य है कि ये हो क्या गया, मेरी मेरे की आंखों से आंसू आने लगे, छलक पड़े आंसू, दुर्वासा के नेत्रों से शरीर में रोमांच हो आया। पास जा, इतने पास पहुंच गए श्याम सुंदर, साधु बाबा आए, साधु बाबा बोलते क्यों नहीं, साधु बाबा दूसरे राज्य में पहुंचे, अरे बोले बाबा सुनता है कि नहीं, क्या है? बोले बता सुदामा हारा, सुदामा हारा तो मैं हारा। अब यहां कोई गंभीर तात्विक दार्शनिक बात नहीं है। अब महर्षि तो आंख फाड़े देखने लगे, इधर देखते ही रह गए। अब उनके मुंह से उत्तर निकले नहीं, हृदय विचलित हो गया। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि बोलता क्यों नहीं, इतने में क्या दशा हुई कि मुनि का जो कंपन हुआ हर्ष के मारे, तो सोचा गिर पड़ेंगे,
खड़े थे ना, तो खड़े रहने की शक्ति नहीं रही, गिरते हुए से उसी पुलिन की बालू पर बैठ गए, निराज बैठ गए। जब बैठ गए तब देखा इनको तो प्रेम देना ही है, तो नन्ही नन्ही अपनी भुजाओं को उठाया, धीरे से उठे, गोद में जाके बैठ गए सबका, गोद में बैठ के छोटी पकड़ी, बोले बाबा बता दे क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं राम हरा कि मैं हरा। अब स्पर्श प्राप्त हो गया, दर्शन प्राप्त हुए, सानिध्य प्राप्त हुआ, अब स्पर्श प्राप्त हो गया, कोई उत्तर नहीं मिला। अब क्या उत्तर मिलता, अब तो मुनि का ढंग दूसरा हो गया, क्या उत्तर मिलता, मुनि चुप। तो वो बोले अरे भैया देखो ये तो साधु को शायद इसको बोलना आता नहीं मालूम, तो आगूंगा अथवा नहीं बोलता होगा, बड़ा घमंडी होगा, बोले साधु है नहीं बोलता होगा, चलो चले चले। यूं कह करके श्री कृष्ण हंस पड़े। अब ये चौथी चीज हुई, मुनि पास आए, फिर ये मुनि के सानिध्य में आए, मुनि की गोद में बैठे और मुनि को देखकर हंस पड़े। अब ये इनकी जो हंसी, ये बाल-लीला हंसी तो थी ही, पर ये हंसी दुर्वासा के नेत्रों के लिए दूसरी भी थी, ये योग माया की हंसी थी। ये मुनिराज को मानो परात्पर ब्रह्म का साक्षात कराने के लिए अधो पर हंसी आ गई, ज्ञान सारा का सारा हंसी के रूप में प्रकट हो गया, और हंसते हंसते दुर्वासा को भी कुछ शेष था, भगवान हंस रहे, मुंह बाया हुआ, जोर से हंस रहे ना खिलखिला करके, दुर्वासा जी देखते ही देखते मुख विवर में प्रविष्ट हो गए। भगवान के मुख विवर में दुर्वासा प्रविष्ट हो गए, योग माया ने कपाट लगा दिया, हंसी बंद हो गई। हंसी इसीलिए थी ना, दिखाना है इनको कि ये क्या है, ये क्या है, स्वर दिखाना है क्या है ये। दुर्वासा ने अब देखा अंदर, भई हम कहाँ हैं, है? ये विशाल लोक है, ये कहीं तो कोई है नहीं, ये जंगल है, जंगलों को पार किया प्राणी नहीं दिखते, ये क्या है, ये तो विशाल समुद्र है, ये सातों लोक हैं, ये द्वीप हैं, सप्त पाताल हैं, कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे, करोड़ों वर्ष बीत गए, अनंत सागरों की अनंत तरंगें उठ रही हैं, इसका अंत कहाँ। फिर सोचा कि मेरे में तो हजारों युग बीत गए और इस जल राशि में बह रहा हूं, डूब रहा हूं, समाधि में हो गया था, अब उत्थान हुआ है, नहीं नहीं सब सब जलमय है, अब मैं कहां जाऊं, ये अंदर छिद्र है, इसमें प्रवेश करूं, अंदर घुसे देखा ये क्या हो गया, ये तो दिव्य सृष्टि है, ये काल मान से नमान कितनी आयु बीत चुकी, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड यहां पर मानो ये बूंदों के समान तमाम बह रहे हैं, तो तमाम मनियों के ही तमाम लोक हैं, तमाम मणियां हैं, रत्नी रत्न हैं। अरे ये तो मैं गोवर्धन में आ गया, गोवर्धन में आ गया, ये वृंदावन आ गया, और ये वृंदावन के ये नवीन नवीन सुंदर सुंदर वृक्ष, ये नव पल्लव नव कृष्णों से सुशोभित, ये मंदार, ये चंदन, ये चंपक, ये आम्र, और ये देखो ना कैसे कैसे सुंदर पुष्प लगे हैं, ये भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, ये बढ़िया, और ये हरि तो जमुना बह रही है, कालिंदी बह रही है, ये गोलोक धाम, गोलोक धाम में आ गया, वहां सच्चिदानंद उन मंदिरों को देखा, तमाम लोग देखे, वो एकादश द्वार हैं, श्री राम वहां पर है, तो ये तमाम गोपांगनाएं कोटि कोटि वहां पर गोपांगनाएं हैं, तमाम जय ध्वनि हो रही है,
इतने में श्याम सुंदर दिखे और श्याम सुंदर हंस रहे हैं। देखा श्याम सुंदर हंस रहे हैं, जो हंसी का है जो सुना है, हंसे फिर हंसे, मुंह खुला बाहर आ गए। ये बड़ा लंबा वर्णन आता है क्या क्या देखा उन्होंने। मुख दिवर से बाहर आ गए, आंख खोल के देखा तो दो लोग नहीं, वही ब्रजपुर है, वही यमुना का तटवर्ती वो बालुकामय स्थान है, ठीक वही लीला स्थली है, वो श्री कृष्ण सखाओं के साथ वही खेल रहे हैं और वैसे हंस रहे हैं। सारा संशय निकल गया, जो निश्चय था ये परात्पर ईश्वर नहीं है। देखो ना मेरा कितना सौभाग्य, मेरी गोद में आ गई और हंसने लगे और इतने छोटे से मुख विवर में मैं प्रवेश कर गया। मैंने क्या क्या देखा, इनकी अंजलि बंध गई, हाथ जुड़ गए और उनके सामने ही वे उस भूमि पर लौट पड़े। मुनि ने वहां की उछाल उठा करके धूल अपने ऊपर डालनी शुरू की और फिर प्रणाम करने लगे। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघर चिमनोज्ञम नंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंद नंदनमहं मनसा स्मरामि मंजीर नूपुर नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यातिहारी मशि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंग तनुजातक बालकेलम पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुंचिताग्राः केशा नवीन घन नील निभास्फुरन्तः राजन् आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दाध्वजाय सबलाय नमो नमस्ते। नवीन नवीन सुंदर कमल के समान जिनके नेत्रों विशाल नेत्रों की परम सुषमा शोभा है, बिंब फल के समान जिनके अरुण अधरोष्ठ हैं, जिन पर मंद मंद हंसी छाई हुई है, ये नए नवनील नीरज घनश्याम ये उनके बदन की कांति है, सुंदर उनका बायक वेश है, ये मधुर मधुर मंद गति से चलते हैं। मैं नंद नंदन को प्रणाम करता हूं। जिन भगवान के श्याम सुंदर के चरणों में नूपुर बज रहे हैं, जिनके कमर में मैया ने बड़ी सुंदर करधनी रत्नों की नौ रत्नों की बांध दी है, जिनके गले में मैया का पहनाया हुआ सुंदर हार है, उस हार में बाघ के नख मैया ने लगा दी है, नजर न लग जाए, और मैया ने जिनके मस्तक पर काजल का टीका लगा दिया है मशु बिंदु, कहीं दृष्टि दोष न हो जाए, इस प्रकार के इस कलिंग तनया यमुना जी के तट पर विविध प्रकार की मनोहर बाल लीला करने वाले उस परम सुंदर नंदलाल की मैं वंदना करता हूं। नंदनंदन के अब प्रात प्रणाम नहीं लिया यहां पर, यहां कहीं इस क्षेत्र में कहीं भी परात्पर ब्रह्म के का नाम नहीं है, नंदनंदन के स्वरूप का सौंदर्य का। फिर बोले कि ये पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुख है और जिस मुख पर घुंघराली अड़कावली छाई हुई है, तो सुंदर काले काले घुंघराले केश बिखर रहे हैं जिनके श्रीमुख मंडल पर, ऐसा मालूम होता इन केशों को देख करके कि मानो नए नीले मेघों की नीलिमा हो, सुंदर सुचिकण है। क्या श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में जो सिर झुका देते हैं उनके लिए ये कुमुद के भांति शीतल बन जाते हैं।
मैं इन्हीं को नहीं बलराम जी को भी और इनके साथी सबके साथ इन गोप बालकों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, खड़े हो गए, भगवान का संकेत मिला, चल पड़े कृष्ण कृष्ण करते हुए वर्णिकाश्रम की ओर। तप करने के लिए नहीं, एकांत में जाकर निरंतर श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में मग्न रहकर उनका नाम गुण कीर्तन करने के लिए यशोदा मैया आ पहुंची। अब तो ये इन्होंने भुला के भेज रखा था ना, यहां दुर्वासा के साथ लीला करनी थी, बहुत देर हो गई, मैया ने देखा कहां खेल वेल गए हैं, तो वो मैया आ गई, वो शिशु भी आ गए। मैया ने आंचल फैलाया अपना और आंचल फैला करके गोद लिया, फिर घर ले गई, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, चलेवा करवाया और दूध पिलाया, फिर गोद में लेकर के मैया ने सुला दिया, कहा बेटा तू जब आलस आ रहा था दूध पी के सो गए, तू अंतिम झांकी का पद सुन लीजिए। तो ये भागवत की कथा में नहीं कहता, ये तो ये महान भाव टीकाकार है वैष्णव कोशनी का और लोग उन लोगों के भावों को लेकर अपनी ये भगवत चर्चा सत्संग करते हैं। तो भगवान की मधुर लीला में हम लोगों का ध्यान लगा रहे और ये लीलाएं हमारे मनों में प्रविष्ट हो जाए और तो इनका चिंतन जीवन में होता रहे, ये बस इसीलिए चर्चा करना। तो कल फल बेचने वाले के सौभाग्य की बात हुई, उस चांडालिनी को श्री कृष्ण ने माँ कहा, उसकी गोद में चले गए। वे जात पात धन विद्या वर्ण वर्ग कुछ नहीं देखते, केवल प्रेमाधीन है, ये उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान के श्याम सुंदर के कुछ खेल की चर्चा हुई, वही चर्चा अभी चल रही है। सुखदेव जी महाराज उसी का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरित्तीय गतम कृष्णम भगनार्जुन मथा भगत रामं चरोहिणी देवी तीरंतम बाल कैर भृषम। तो यहां से खेलते खेलते कभी ये चले जाते हैं यमुना के तट पर। अब वो आगे बढ़ने लगे, जाने लगे, कुछ बड़े हो गए ना, अब घर पर ही रहकर इनका खेलना इनके लिए पर्याप्त नहीं होता, संतोष नहीं देता। बाहर जाते हैं बच्चों के साथ खुले मैदान में बालू का पुलिन पर, तो मजे नहीं खेलते। अब पर वो अभी तक बालकपन है और ब्रजरानी का जो स्तन्य है, मधुर स्तन का वो रस दूध जो केवल प्रेम से स्नेह से ही बना हुआ अमृत, उसकी भूख नहीं मिलती, तो बीच बीच में आकर स्तनपान कर लिया करते। तो बच्चे ताली देते हैं, हंसते हैं, इतना बड़ा हो गया अभी तक दूध पीता है, खाता तो है, चलेवा भी करता है, पर रहरा रहा नहीं जाता। तो मैया एकदम समझाने लगी, देख बेटा अब तू बड़ा हो गया और अब तू बार बार आकर के इस तरह से
तो आंचल में घुस जाता है, स्तनपान करने लगता है। वैदिक बच्चे होते हैं, दसुमत की कान ही यह सिखावत, सुनम श्याम अब बड़े भये तुम, यह कई स्तन पान छुड़ावत। ब्रज लरिका तुम पीवत देखत हंसत लाज नहीं आवत, जई दिवई दांत ये आछे ताते कई समझावत। अजम छाड़ कहो कर मेरो ऐसी बात न भावत, सूर शाम यह सुन मुस्काने अंचल मुखे लुकावत। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर झांकी देखी, उन्होंने कहा कि मैया एक दिन ये आए और दौड़े आकर के बक्षस्थल का वस्त्र खींच लिया, मुख सुंदर अपना उसमें छुपाए लिया और स्तनपान करने लगी। तो मैया समझाने लगी, सिखाने लगी कि देख बेटा अब तुम बहुत बड़े हो, अब जब तुम इस प्रकार से स्तनपान करते हो तो देखना कि तुम्हारे साथी सब ये आ करके ताली पीटते हंसते हैं तो तुमको लाज नहीं आती, और जब बेटा ये जब तक दांत नहीं आते तभी तक ये दूध पिया जाता है, नहीं फिर इस दूध से दांत बिगड़ जाते, तो तुम्हारी जो सुंदर सुंदर गठलियां हैं ये सब खराब हो जाएंगी, तो मेरी बात मान ले और अब तू छोड़ दे। पर मैया की बात सुन करके वो मुस्कुरा दी और आंचल में मुंह छिपा लिया, जो बस दूध पीने लगे इतने में तो सब सखा दौड़े आए, सुबल श्री राम और उज्जोर और बसंत और तोक और वो मधुमंगल सब के सब, तो आके जब उन्होंने पुकारा वो हो मचाया तो अब कौन गोद में रहता, अब तो खेल की बात हुई तो गोद से उतरे और भाग छूटे। अब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री अंगों का जो तेज चारों ओर फैल रहा, माता उसको देख करके उसके नेत्र माता के निष्पन्द हो गए, थकित रह गई। अजर पद प्रतिबिंब राजत चलत उपमापुंज, प्रति चरण जन हेम वसुधा देत आसन कंज, सूर प्रभु की निरख शोभा रहे सुर अवलोक, शरद चंद चकोर मानो रहे थकित मिलो। जा पहुंचते कालिंदी के तट पर, वहां बड़ी धमाचौकड़ी मस्ती, कोई हिसाब किताब थोड़ा ही था और न कोई छोटे बड़े का ख्याल, छोटे बड़े का ख्याल हो तो भगवान अपना वैकुंठ में रहें, गोलोक में कहीं रहे जहां पूजा ही पूजा होती रहे, कि भगवान पूजा से उठ जाते हैं पूजा कराते कराते, क्योंकि वैकुंठ धाम में गोलोक धाम में तो सभी लोग हाथ जोड़े रात दिन स्तवन करते हैं पूजा करते हैं, कोई डांटता बिगड़ता नहीं, कोई बराबरी करता नहीं, कोई कुछ नहीं।
कृष्णा नाम कृष्ण